दिन की संध्या वेला में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सविता बहन। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर सविता बहन हमारी 1965 के बॉर्न हैं और 1975 में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन शुरू किया और आपने चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा को पूर्ण करते हुए 1990 में अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। आप सबको विदित रहे कि आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में फिजिशियन के रूप में अपनी प्रारंभ में सेवाएं दी। उसके पश्चात आपको आदरणीय दादी जी का पर्सनल डॉक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सीनियर भाई बहनों के फैमिली डॉक्टर के रूप में मधुबन में अपनी आज भी सेवाएं दे रही हैं। आप सॉफ्ट और सॉलिड वक्ता हैं। आप महिला प्रभाग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने महिला प्रभाग के और अन्य चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न सेवाओं को पूरे भारत में बाबा का संदेश दिया है। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी आपने विदेशों में जाकर, कई देशों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हम आपसे चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों का समर्थ और श्रेष्ठ जीवन रहे, उसके लिए हमें कुछ युक्तियां उपाय बताएं। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी।
ओम शांति, ओम शांति। तीन दिन की पांडे भवन में आप सभी भट्टी कर चुके हैं, काफी हद तक अपने को भरपूर अनुभव कर रहे होंगे, महसूस कर रहे हैं। हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है और ऐसी चार्ज हुई है कि पूरे साल चलेगी हम, या एक महीना चलेगी, क्या कहेंगे, पूरा साल चलेगी ना। तो हम बाबा के घर से वो पावर अपने में भर के जाते हैं, जिसे बाबा कहता है बादल भर के जाते हैं। और जब बादल भर के जाते हैं, जैसे आजकल भी बादल बरस रहे हैं ना, तो वो बादल नहीं, लेकिन यहां से हम भर के जाएंगे तो फिर अन्य आत्माओं की भी सेवा करेंगे। तो न सिर्फ ज्ञान के द्वारा, लेकिन अपने चेहरे चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी सेवा स्वतः होती है। तो हर रोज आपको यहाँ स्वमान मिलता है, आज का भी स्वमान मिला हुआ है। क्या स्वमान है? एक की भी आवाज नहीं सुनाई दी, एक जना जोर से बोलेगा तो सुनाई देगा। बोलिए, मैं समर्थ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो समर्थ कैसे बनेंगे, समर्थ कैसे बनेंगे, समझा होगा ना क्लासेस में, जैसी स्मृति वैसे समर्थी, ऐसे बोलते ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हमारी स्मृतियों को बाबा ने समर्थ बनाया है, हमें बाबा ने अनेक स्मृतियां दिलाई हैं, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है, वो हमारे तीनों कालों को जानते हैं। हम तो अपने एक काल को भी सही तरीके से नहीं जानते, लेकिन बाबा तीनों कालों को जानते हैं, और इसीलिए जो हम भूल चुके हैं पास्ट का और क्या भविष्य होगा, वो बाबा ने हमें याद दिलाया है। और वो स्मृतियां इतनी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं जिसे हम स्वमान कहते हैं। स्वमान यानी शाब्दिक अर्थ कहेंगे तो स्वयं को मान देना। दुनिया में लोग इसे आत्मसम्मान कहते हैं, मेरा आत्मसम्मान कितना श्रेष्ठ है, उसी अनुसार ही हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है। और जितना आत्मविश्वास हमारा अच्छा होता है, उतना ही हम सफल होते हैं। सफलता का आधार आत्मविश्वास है। और यदि हमारे अंदर वो स्मृति नहीं है, श्रेष्ठ स्मृति नहीं है, कहीं ना कहीं कोई हीन भावना है, जैसे भक्ति मार्ग में हम कहते रहे भगवान के आगे, मैं कौन हूँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैं जो भी, मैं निर्गुण हूँ, मैं गंदा हूँ, बंदा हूँ, और भी हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। आरती में हम गाते हैं, मैं मूरख खलकामी हूँ, कृपा करो भरता। तो हमेशा भक्ति में हमने अपने आप को दीनहीन समझा, और भगवान बहुत श्रेष्ठ है, ऊंचा है। तो कभी मिलन नहीं हुआ परमात्मा से, क्योंकि जहां समानता नहीं है वहां समीपता नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने हमें अपने चरणों के दास और दासी से क्या बना दिया, क्या बना दिया, सिर का ताज, सिर का ताज बना दिया। तो सिर का ताज माना जैसे माता पिता बच्चों को अपने कंधे पर बिठाते हैं, अपने से भी ऊंचा उठाते हैं, ऐसे ही भगवान ने भी हमें अपने से भी ऊंची नजर से देखा। तो जिस नजर से भगवान ने हमें देखा, क्या वो हम अपने आप को समझते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब आपसे पूछेंगे स्वमान, तो मेरे से ज्यादा आप सुना देंगे, क्योंकि 3 दिन में आपने इतना सुना है। क्या क्या स्वमान दिए हैं, यानी कौन कौन सी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई हैं, और क्या वो हम अपने आप को मानते हैं, बोलिए क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं बाबा ने। मैं कौन हूँ वो तो है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, और इसके आगे, ये तो आत्मा के निजी गुण है ना, लेकिन उसके आगे और, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं, महादानी वरदानी और विजयी आत्मा है, कल्प कल्प की विजयी, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, विश्व के आधार मूरत हैं, उधार मूरत हैं, और मास्टर पतित पावन है, मास्टर अक्षयता है, भगवान के नयनों के नूर हैं, जहान के नूर हैं, इतने टाइटल हैं, याद करते जाएंगे तो और लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बाबा जिस नजर से हमें देखते हैं, क्या हम उसे स्वीकार करते हैं, या सिर्फ सुनकर खुश होते हैं ना, और मन में सोचते हैं कि कहां भगवान इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, हम तो साधारण आत्माएं हैं, घर परिवार में रहने वाले, अपनी गृहस्थी चलाने वाले, कहां इतनी ऊंच महान आत्माओं के भी टाइटल नहीं है ऐसे। बाबा कहता है संसार में कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई धर्म नेता हो, लेकिन किसी को भी इतने टाइटल नहीं है और ऐसे टाइटल नहीं है जैसे टाइटल हमें हैं। हैं किसी को? दुनिया की एक लिस्ट होती है हु इज हु, एक बुक होती है जिसमें दुनिया की जो नामी ग्रामी हस्तियां होती हैं उनके नाम होते हैं, उनके पूरे बायोडेटा होते हैं, वो दुनिया में क्या करते हैं, और हर साल एक बुक में उनका नाम छपता है कि दुनिया की 100 शक्तिशाली हस्तियां ये हैं, आप जानते होंगे। हाँ, फिर उसमें बताते हैं कि भारत की कौन कौन सी हस्तियों का नाम उसमें भी है, उस 100 की लिस्ट में है। तो हम तो कहीं भी नहीं है उस लिस्ट में, आते हैं कहीं नहीं आते है ना, लेकिन कौन सी लिस्ट में है हम? उस हु में नहीं है, लेकिन भगवान की लिस्ट में है। वो भगवान की लिस्ट में नहीं है, वो बहुत अच्छी कहानी सुनाती ना नारद की, कि नारद एक बार गए विष्णु जी के पास, तो वो एक छोटी डायरी देख रहे थे, तो पूछा उनसे भगवान आप क्या देख रहे हैं, तो कहा उन भक्तों के नाम देख रहा हूँ जो दिन रात मेरा जाप करते हैं। तो नारद जी बहुत खुश हुए क्योंकि उनको पता था मैं तो बहुत जाप करता हूँ तो मेरा नाम तो सबसे ऊपर होगा। कहा भगवान मैं देख सकता हूँ इस लिस्ट को? तो भगवान ने कहा क्यों नहीं, खुशी से देखो। तो देखा सचमुच उनका नाम सबसे ऊपर था। फिर उन्होंने देखा सबसे लास्ट में तो हनुमान जी का नाम है, तो आपको पता है कि बहुत फास्ट उनका कम्युनिकेशन पावर, तुरंत पहुंच गए हनुमान जी के पास। ऐसे ऐसे मैंने भगवान के पास एक डायरी देखी और आपका नाम तो उसमें सबसे नीचे और मेरा नाम। फिर दूसरे दिन पहुंचे तो देखा आज भी विष्णु जी कोई डायरी देख रहे हैं, तो देखा पूछा उनको कि भगवान आज कौन सी डायरी देख रहे हैं? बोला आज वो डायरी देख रहा हूँ जिसमें जो भक्तों को मैं याद करता हूँ। पहले दिन था जो भक्त मुझे याद करते हैं, लेकिन आज जिनको मैं याद करता हूँ वो देख रहा हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा मेरा नाम कहाँ होगा इसमें। मैंने कहा भगवान मैं देखूँ? तो बोला हाँ देखो। तो देखा उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर और नारद जी का नाम सबसे तो हम कौन सी डायरी में है भगवान की? जिनको भगवान याद करते हैं, ऐसा ही कहेंगे ना। दुनिया में बहुत भक्त हैं जो भगवान को याद करते हैं, रात दिन उनका स्मरण करते हैं, लेकिन हम भगवान की उस डायरी में हैं जिसे भगवान खुद स्मरण करते हैं। और इसीलिए क्योंकि भगवान ने हमें स्वमान दिया और सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि बाबा खुद हमें हर रोज मुरली में याद प्यार और नमस्ते कहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमें याद प्यार और नमस्ते नहीं मिलता है। इस ज्ञान से, स्वमान से हम देह अभिमान का त्याग करते हैं और देह अभिमान के त्याग से ही हमें स्वमान की प्राप्ति होती है। देह अभिमान और स्वमान का संबंध है, अगर देह अभिमान का त्याग नहीं तो स्वमान भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्वमान आत्मा का स्वमान है, देह का स्वमान नहीं है। देह का स्वमान अभिमान हो जाता है, हम सब जानते हैं देह अभिमान की वैरायटी क्या क्या है ना। देह अभिमान माना मैं फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ, स्वमान में भी मैं फलाना हूँ, लेकिन किसका? आत्मा का। मैं कौन सी आत्मा हूँ वो, और देह अभिमान माना देह के संबंध की जो प्राप्तियां हैं उसका अभिमान। तो यदि हम अभिमान में हैं तो स्वमान में नहीं हो सकते, और स्वमान में है तो अभिमान नहीं रह सकता। इसको बाबा कहता है दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट हैं, रात है तो दिन नहीं और दिन है तो रात नहीं। तो क्योंकि हमने देह अभिमान का त्याग किया और स्वयं भगवान हमें वो स्वमान देते हैं, और इसीलिए जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो पूरा कल्प सम्मानधारी और सम्मानधारी होती हैं। देवी देवताओं के रूप में है ही सम्माननीय। द्वापर युग में जब पूजा शुरू होती है तो आज भी हम देखते हैं देवी देवताओं का पूजन कितना सम्मान पूर्वक होता है। आज भी देखो जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें दर्शन के लिए क्या हालत होती है। साउथ में ही है ना वो मंदिर, पुट पर नहीं, तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी में कैसे दर्शन होते हैं आप लोग जानते हैं। हाँ, ऐसे जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रसिद्ध देवताओं के मंदिर हैं उन मंदिरों में दर्शन के लिए आज भी, तो कितना सम्मान है उनका कि एक दर्शन के भी प्यासे हैं। एक मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते उस मूर्ति के सामने। हाँ, इतनी मेहनत करके पहुंचते हैं वहां और एक मिनट भी आपको खड़े हुए नहीं दिया जाता। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिया और सम्मान दिया है, ऐसे हमें भी औरों को सम्मान और सम्मान देना है। ये बाबा हमें सिखाते हैं, लेने वाले नहीं बनना लेकिन देने वाले बनना है। देवता माना देने वाले। हम ब्रह्मा बाबा का सुनते हैं कि बाबा ने कैसे सबको सम्मान दिया। बाबा ने हर एक आत्मा को जो भी बाबा से मिलती थी उनके प्रति उनके बोल कैसे होते थे, उनका सम्मान बढ़ाने वाले बोल होते थे, इसलिए वो वरदानी बोल हो गए उन आत्माओं के लिए। हम जो भी सुनते हैं हमारी दादियों को वरिष्ठ भाइयों को, उनके प्रति बाबा ने कैसे बोल बोले, है ना, उनका सम्मान बढ़ाने वाले बोल बोले, यानी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, जो उनको पुरुषार्थ में बाबा से भी आगे बढ़ाए, ऐसे बोल बाबा ने उनको बोले। बाबा के सामने कोई बच्चे आते थे तो बाबा उन्हें सम्मान का स्नेह देते थे। ये नहीं कि ये बच्चे हैं, लेकिन नहीं, उनको भी ऊंची नजर से देखा कि ये होवनहार विश्व कल्याणकारी हैं, ये बच्चे नहीं हैं, यही बच्चे बड़े होकर क्या करने वाले हैं। और आज वही बच्चे जो उस समय हमारी दादियां छोटे छोटे बच्चे थे जो बोर्डिंग में आए, सचमुच वो विश्व कल्याणकारी बने और आज कितनी बार वो विश्व का चक्कर लगा चुके हैं। फिर बाबा ने कुमार कुमारियों को सदा इस सम्मान से देखा कि ये नामी ग्रामी महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं, ये असंभव को भी संभव करने वाले हैं, ये महात्माओं के भी सिर झुकाने वाले हैं। क्योंकि आज की दुनिया में लोग जिसको असंभव मानते हैं उनको उन्होंने संभव करके दिखाया। तो उस दृष्टि से बाबा ने हमेशा कुमार कुमारियों को देखा। जो बांधेली माताएं थी बाबा ने हमेशा उनको ये योग में नंबर वन है, भले ही बंधन वाले हैं लेकिन ये योग में सबसे तीखी हैं और योग के कारण ही ये ऊंच पद पालेंगे, ऐसा बाबा हमेशा कहते थे। जो भी बुजुर्ग बाबा से मिलते थे उनको बाबा हमजींस के रूप में देखते थे, मेरे ही समान अनुभवी आत्माएं हैं, जैसे मैं अनुभवी हूं ऐसे ये भी पूरी प्रवृत्ति के अनुभवी हैं, संसार के अनुभवी हैं। तो जिस नजर से बाबा ने सबको देखा ऐसी नजर से हमें भी देखना है। फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा है, कई बार हो सकता है कि जो आत्माएं हमसे मिलती हैं वो हमारे अनुसार नहीं होंगी, क्योंकि सभी के स्वभाव संस्कार हमारे जैसे नहीं होंगे, कोई हमारे विरोधी भी होंगे कोई हमारे सहयोगी भी होंगे, दोनों तरह की आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं। तो जो विरोधी आत्माएं हैं मानो, हाँ, हमारी निंदा करने वाली आत्माएं हैं, हमारी ग्लानी करने वाली आत्माएं हैं या हमारा अपमान करने वाली आत्माएं हैं, क्या उनके प्रति भी हमारा सम्मान और सम्मान हो सकता है? हो सकता है, अगर है तो ही हम देवता हैं, और अगर नहीं, जो हमसे सहयोगी हैं उनके लिए सम्मान देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो करते ही हैं, सभी करते हैं, दुनिया में भी अज्ञानी लोग भी करते हैं, ऐसा ही करते हैं कि जिसके सब सहयोगी हैं उनको तो हम सहयोग करेंगे ही, जो हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं उनके प्रति हम शुभ भावना रखेंगे ही। लेकिन जो हमारे प्रति नहीं रखते फिर भी रख पाए, यही ज्ञान की शक्ति है, ऐसे ही कहेंगे। तो ये अपने आप को हमें चेक करना है, क्योंकि स्वमान में रहने वाली आत्मा के लिए बाबा कहता है कि वो कभी भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रख सकती, या किसी के भी अवगुण देख करके उसके प्रति ये तो है ही ऐसे, या किसी के कर्म का हिसाब किताब देख करके कहें कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो हम कई बार नेगेटिव चिंतन में आ जाते हैं। कैसी भी आत्मा है, मुझे सहयोग देना, मेरा कर्तव्य क्या है उस समय, जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे करना, ये उसको सम्मान देना है उस आत्मा को। तो बाबा के सम्मान हमें सभी आत्माओं को, जैसे हम बाबा को देखते हैं, अव्यक्त बाप दादा भी कभी आते हैं, कैसी कैसी आत्माएं बाबा के सामने जाती हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि कैसी होती है सभी के प्रति, बाबा दृष्टि देते ना सभी को, तो सभी के प्रति एक जैसी स्नेह की दृष्टि बाबा सबको देते हैं। जब भी हम स्वमान की स्मृति में होते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची होती है, जैसे कहा स्मृति से समर्थी आती है। बाबा ने क्यों हमें ये स्मृतियां दिलाई, जैसे वो दिखाते हैं हनुमान का मिसाल, कि जो हनुमान था उसके अंदर उड़ने की क्षमता थी, इसलिए उसको पवन पुत्र कहते हैं। लेकिन जब रामायण में जो प्रसंग आता है कि जब समुद्र पार करने की बारी आई तो इतना बड़ा समुद्र देख करके उसने कहा कि नहीं, इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे, लाखों योजन समुद्र है, मैं तो पार नहीं कर सकता इसे, मैं तो लंका में नहीं जा सकता हूँ। तो फिर जो जामबंद था उसे मालूम था हनुमान की शक्तियाँ क्या है, लेकिन ये हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गया है, तो उसने उसको याद दिलाया कि तुम भूलो मत तुम कौन हो, और फिर पूरी तरह से उसको सारा याद दिलाया। और जब उसे ये याद आया कि हाँ मेरे अंदर वो ताकत है ना, ये तो मेरे अंदर बचपन से ही क्षमता है कि मैं चाहूं तो हवा में उड़ करके लाखों योजन लांग सकता हूं, तो वो पार करके गया, वो ताकत उसके अंदर स्मृति आते ही आ गई और उसने वो किया। एक राजा का बच्चा है, अगर वो बिछुड़ जाता है, उसको ये भूल जाता है कि मैं राजकुमार हूं, उतने ऊंच कुल से हूँ, और मानो वो एक गरीब परिवार में आ जाता है, तो उसको विस्मृति हो गई, तो वो कभी भी वो उस खुशी और नशे को अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पुनः वो उसमें आ जाता है, पुनः उससे राजा ढूंढ लेता है और पुनः राज परिवार में आ जाता है, तो उसे पुनः अपनी उस कुल के नशे में आने में कितना समय लगेगा। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है उसके ऊपर, शास्त्रों की बोध कथा है, तो कुछ जानवरों को लेकर के उसका जैसे मोरल होता है कि एक बार एक शेर का बच्चा जंगली भेड़ों का झुंड था जंगल में, उसमें चला गया, अपनी माँ से अलग हो गया, फिर उसको समझ में नहीं आया, भेड़ों का झुंड जा रहा था तो उसी के पीछे पीछे वो चलने लगा। तो उसमें एक जो बड़ी भेड़ थी उसने देखा कि ये कुछ अलग सा लगता है, उसको भी समझ में नहीं आया, शेर का बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चे तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, तो उसने सोचा हो सकता है कोई बात नहीं, बच्चा है तो इन भेड़ों के बीच में ही पल जाएगा, तो उसने उसको शामिल कर लिया भेड़ के झुंड में। तो अब वो शेर का बच्चा जो है वो भेड़ों को ही देखता था, तो भेड़ों जैसी आवाज निकालने लगा, फिर घास भी खाने लगा क्योंकि भेड़ें घास खाती थी, तो उसको वो मतलब उसको याद ही नहीं आया कि वो शिकार भी कर सकता है। फिर बाद में जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसका जो साइज था, नेचुरली शेर था वो, तो शेर के जैसा उसका आकार बड़े रूप में दिखाई देने लगा तो भेड़ों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये तो हमसे सबसे अलग दिखता है, ये तो हमारे जैसा नहीं है। तो उसके अंदर हीन भावना आने लगी कि अच्छा तो ऐसा क्या अलग है, क्योंकि वो खुद को तो नहीं देख सकता था, वो तो दूसरी भेड़ों को देखता था, तो मेरे अंदर क्या अलग है ये तो समझ नहीं आता था, लेकिन लोग मेरे से ये सारी भेड़े नफरत करती हैं, इतना उसे जरूर समझ में आता था कि इनसे मैं कुछ अलग हूं। और ये भी उसको लगता था कि इनके पीछे पीछे चलना अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ ओरिजिनल संस्कार जो थे शेर के वो इमर्ज भी होने लगे थे, है ना। तो शेर तो जंगल का राजा होता है, वो तो अकेला ही रहता है कहां भेड़ों के झुंड के पीछे पीछे, लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी जो बड़ी भेड़ थी जिसने उसको उसमें शामिल किया था उसने उसको समझा रखा था कि तुझे कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाना, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं और खास शेर का डर कि जो शेर होता है जंगल का वो भेड़ों को ही खाता है, तो वो भेड़ों को खा लेता है, तो कभी भी अकेले जाओगे तो कभी भी कोई शेर आकर के तुमको खा लेगा। अब उसको ये तो नहीं पता था कि मैं शेर हूं, तो बस जैसे ही वो सोचता मैं यहां से भाग जाऊं उसे वो बात याद आ जाती कि डरा रखा है माँ ने, डर वो माँ ही समझता था उसको, उसने डरा रखा है कि नहीं जाना है शेर खा लेगा। पर एक दिन जब वो बहुत ही तंग हो गया, यानी हीन भावना से वो बहुत डिप्रेशन में चला गया जिसको कहते हैं, तो उसने सोच ही लिया कि मुझे इससे मुक्ति पानी है, मुझे जाना ही है, चाहे भले शेर खा जाए कोई बात नहीं। तो वो जंगल में घुस गया, अंदर जंगल में घुसा, बहुत अंदर चला गया तो वहां प्यास लग रही थी, तो एक लेक के किनारे पहुंचा, तो जो जंगल का शेर था वो भी वहां लेक के किनारे पानी पीने आया था। तो जब इसने उसको देखा तो उसने सोचा ये इतना बड़ा बड़ा है, लगता है यही शेर है, अब तो ये मुझे खा ही जाएगा, तो डर के मारे थर थर कांपने लगा वो। तो शेर ने उसको देखा, तो शेर ने देखा कि ये दूसरा शेर है लेकिन कांप रहा है, और शेर जैसा मतलब उसका कोई जैसे होता है ना कि एक रौब होता है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने उसको पूछा कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों कांप रहे हो? तो उसने कहा तुम मुझे खा जाओगे, तुमसे डर लग रहा है मुझे। तो उसने कहा तुम शेर हो, मैं तुमको क्यों खा जाऊंगा? उसने कहा लेकिन मैं तो भेड़ हूं। उसने कहा अरे नहीं, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, किसने कहा तुम भेड़ हो? तो उसने कहा मेरी माँ तो शुरू से ही मुझे बताया है कि मैं भेड़ हूं। तो उसने कहा नहीं, तुम भेड़ नहीं हो। तो उसको विश्वास ही नहीं हो कि मैं भेड़ नहीं हूं। उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ ही हूं। उसने बहुत उसको कोशिश की समझाने की कि नहीं तुम शेर हो, भेड़ नहीं हो, तो माने ही नहीं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, पानी में वो शक्ल दिखती है ना, तो उसको लेके गया उस झील पर, तालाब पर, और वो पानी में शक्ल दिखाई उसकी कि देखो इसमें तुम ये शक्ल देखो अपनी और मेरी शक्ल देखो, क्या तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है? तो उसने देखा पानी में, तो उसने कहा हाँ शक्ल तो मेरी इससे ही मिलती है, और ये शेर है, मैं तो इसके जैसा ही लग रहा हूँ। तो फिर उसको थोड़ा समझ में तो आया, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, अभी भी क्या दिमाग में था, मैं तो भेड़ हूँ। फिर उससे लगा ये शेर मुझे खा नहीं रहा है, और ही मुझे समझा रहा है, तो ये इसका मतलब अच्छा शेर है। उसके मन में उसके प्रति एक सम्मान का भाव की, तो उसने कहा अच्छा आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा देखो तुम्हें जो करने की इच्छा है, तुम क्यों आए इस जंगल में? तो उसने कहा कि मैं बहुत निराश था अपने जीवन से, क्योंकि मैं भेड़ों के साथ ही रह रहा हूं। और फिर उसने उसको बोला तुम दहाड़ के दिखाओ, तो उसको दहाड़ना नहीं आया, उसने मिमियाया जैसे शेर भेड़े मिमियाती हैं। तो उसने कहा तुम क्या आवाज निकाल रहे हो ये? तो उसने कहा, उसने शेर ने उसको दहाड़ के बताया कि देखो शेर की दहाड़ ऐसी होती है, ऐसे आवाज निकालो। तो उसको आए नहीं निकालना, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं ऐसी आवाज निकालना। तो शेर ने कहा ठीक है, तुमको मैं ट्रेनिंग दूंगा, तुम रोज मेरे पास आओ। और मैं तुमको सिखाऊंगा कि शेर क्या होता है, शेर की चाल क्या होती है, शेर की दहाड़ क्या होती है, शेर कैसे शिकार करता है और शेर कैसे निर्भय होकर जंगल में जाता है। तो उसने कहा अच्छा तुम सिखाओगे मुझे। उसने कहा हाँ क्यों नहीं सिखाऊंगा। तो उसने उसको सिखाना शुरू किया, लेकिन टाइम लगा, इतना जल्दी वो सीख नहीं गया। आप देखो उसके संस्कार बचपन से पड़ गए ना, भटक गया वो बचपन में ही, तो वो संस्कार इतने पक्के हो गए थे कि उसको भेड़ से शेर बनने में, ऐसा नहीं कि वो शेर नहीं था और ऐसा नहीं कि वो दहाड़ नहीं सकता था, ऐसा नहीं कि वो शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन कितना टाइम लगा, काफी समय लग गया उसको, महीनों लग गए। तब उसने धीरे धीरे उसको दहाड़ना आने लगा, उसने उसके साथ शिकार करना सीखा। आप समझ गए कहानी का, बोध कथा का अर्थ क्या है। अब ऐसे नहीं है कि हम आत्मा नहीं है, लेकिन भूल गए हम इस संसार में आकर के द्वापर युग से हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं। अब ऐसा नहीं कि हम देवता नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि जो बाबा हमें याद दिला रहा है हम नहीं है, हम हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है ना, जैसे वो मानने को तैयार नहीं कि मैं शेर हूं, है शेर लेकिन कहां भटक गया, भेड़ों में भटक गया, तो स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि सचमुच मैं शेर हूं। बाबा हमें इतनी ऊंची ऊंची स्मृतियां दिला रहे हैं तो इतना जल्दी हमसे वो स्वीकार नहीं होती, क्योंकि हम इतना दूर निकल गए। तो बाबा को भी हमें पुनः अपने स्वरूप में लाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। क्या हमें अपना स्वमान रोज याद रहता है, रोज बाबा याद दिलाते हैं, कोई मुरली ऐसी नहीं होती जिस दिन स्वमान नहीं होता है, हर मुरली में कोई ना कोई स्वमान होता है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं इतनी ऊंच आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। अगर मुझे ये स्मृति रहे, जैसे कोई सीट पर होता है, बाबा ने कहा अगर कोई सीट पर सेट है तो सब लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, मानते ना, सब उसका ऑर्डर मानते हैं क्योंकि वो सीट पर पोजीशन पर है। तो अगर हम भी अपनी पोजीशन पर हैं तो माया हमारे ऑर्डर में चलेगी, हम माया जीत सहज बन जाएंगे, सहज हम विघ्न विनाशक होंगे, सहज हम विजयी होंगे। लेकिन अगर सीट छोड़ दिया तो, आज प्रेसिडेंट है कोई, प्राइम मिनिस्टर है, कल सीट से उतर भी जाते हैं, उतरते ही हैं, या तो 5 साल की सीट होती है ना, दोबारा चुन के आए तो ठीक, नहीं तो, तो जब तक सीट पर हैं तब तक उनकी वैल्यू है, और सीट से उतरे तो वो वैल्यू तो नहीं रहती। तो फिर जैसे उनका ऑर्डर तब माना जाता था, अब उनका ऑर्डर नहीं माना जाएगा, अब वो देश में कोई कानून नहीं बना सकते, अब वो देश के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं चला सकते, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर हम स्वमान की सीट पर नहीं हैं, तो हमारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। फिर हम सोचते हैं ये विघ्न आ गए, वो विघ्न आ गए, माया आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। विस्मृति कब होती है, जब हम क्यों क्या कैसे व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, तब हम कमजोर होते हैं। अगर स्वमान में है तो सदा ही समर्थ स्थिति है, और इसीलिए हर रोज बाबा हमें कहता है अमृत वेले से ही हमें अपना एक स्वमान निश्चित कर लेना है और उस स्वमान की गहराई में जाना है। आज सारा दिन अगर जो हमने स्वमान लिया, मैं समर्थ आत्मा हूं, तो सुबह से हर घंटे में मुझे अपने आप को ये बार बार स्मृति दिलानी है कि एक समर्थ आत्मा होने से मेरा स्वरूप क्या होगा, मेरी स्थिति क्या होगी। या हम अलबेले हो जाते हैं, स्मृति दिलाते हैं अलबेले हो जाते हैं, ठीक है ना, एक बार स्वमान सोच लिया, सुन लिया, अच्छा फिर खुश भी हो गए, स्वमान से खुशी तो होती है, लेकिन जैसे कहते हैं जब तक आप किसी नशे को घोटेंगे नहीं ना, तब तक वो भी नहीं चढ़ेगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े ऐसा कहते हैं। दुनिया के भी जो नशे हैं वो कब चढ़ते हैं, कब चढ़ते हैं, जब उनको फूटा जाता है, जैसे भांग का नशा भी तब चढ़ता है जब उसको फूटा जाता है, या शराब भी तब चढ़ती है जब उसको पिया जाता है ना, तब तक नहीं चढ़ेगी। कोई भी नशा हो, जब तक आपने उसको लिया नहीं है, आपके शरीर के खून में वो मिला नहीं, मिक्स नहीं हुआ, तब तक उसका नशा नहीं छड़ेगा। तो जब तक हमने उस स्वमान का मनन चिंतन नहीं किया, उसको घोटा नहीं, तब तक उसका स्वरूप हमें, यानी उसका जो नशा स्थिति है वो हमें अनुभव नहीं होगी। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, मुझे याद है कई साल पहले, अपने पांच स्वरूपों का अभ्यास करो और कम से कम आठ बार। याद है किसी को? किसको याद है? अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। तो पांच स्वरूप हमारा सब स्वमान है। मैं देवात्मा हूं, वो भी मेरा स्वमान है। मैं पूज्य आत्मा हूं, वो भी मेरा स्वमान है। मैं ब्राह्मण हूं, ये भी मेरा स्वमान है। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली हूं। फरिश्ता स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, ये भी हमारा स्वमान है। मैं आदि अनादि निराकारी आत्मा परम धाम में संपन्न स्थिति में हूँ। अनादि स्वरूप हमारी सतो प्रधान स्थिति है, वो भी मेरा स्वमान है। तो यदि मैंने वो पांच स्वरूप का अभ्यास किया तो फिर मेरी स्थिति कैसी होगी? कैसी होगी? सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली। और हमें योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, योग जैसे लगा हुआ ही है, क्योंकि हम अलौकिक स्मृतियों में हैं, वो हमें भूला नहीं है कि मैं कौन हूं। तो अगर अभी भी हम वो अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें अपने आप को पक्का करना है कि मुझे ये अभ्यास आठ बार सारे दिन में करना है। हम सहज ही तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे, सहज ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अभी हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? उड़ती कला का। अभी चलती कला वाला अभ्यास जो है वो हमारे लिए हमें मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, समय कम है और हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। तो हमारा पुरुषार्थ अभी सहज भी हो, हमें मेहनत भी ना लगे, लेकिन उड़ती कला वाला भी हो। तो सबसे सहज पुरुषार्थ ये है कि अपने स्वमान को पकड़ो और स्वमान की गहराई में जाओ। अब जैसे बाबा हमें कहते हैं, आप हाईएस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। अब हाईएस्ट क्यों कहा बाबा ने? हाईएस्ट क्यों कहा? क्योंकि हम स्वयं परमात्मा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं और परमात्मा के साथ परम धाम में, क्योंकि हम सबसे पवित्र हैं, भगवान के द्वारा जो हमें विधि मिली उस विधि प्रमाण हम पवित्र बनते हैं। दुनिया में भी पवित्र आत्माएं होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन वो उस विधि से पवित्र नहीं बनते जो डायरेक्ट परमात्मा के श्रीमत है। वो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं, लेकिन मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, इस विधि पूर्वक वो पवित्र नहीं होते हैं। हमारा वो नेचुरल स्वरूप हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए परम धाम में भी हम बाबा के सबसे समीप रहने वाली आत्माएं हैं, और चमक में भी अन्य आत्माओं से अधिक है। ऐसे हम कहेंगे आसमान में चमकते हुए सितारे हैं, तो ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाता है? जो ज्यादा चमकते हैं वो ध्यान खींचते हैं। तो ऐसे ही हम बाबा के वो चमकते हुए सितारे, इसीलिए बाबा हमें कहता है जहान के नूर हैं या नैनों के नूर हैं। आप नहीं हैं तो जहान को रोशनी नहीं है। तो उसका विस्तार ये है, इस रीति से उसको सोचना है उस स्वमान का। फिर भी हम और भी रीति से ऊंच आत्माएं हैं, क्योंकि हम डबल पूज्य बनते हैं। शिव बाबा से भी आगे हम आत्माओं की पूजा होती है, निराकार रूप में भी होती है, साकार रूप में भी होती है। साकार रूप में, देवता रूप में हमारा पूजन होता है और बहुत विधि पूर्वक। और धर्म पिताओं का भी पूजन होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जितना विधि पूर्वक देवताओं का पूजन होता है उतना विधि पूर्वक उनके दिन होते हैं। कोई दिन जाकर के लोग प्रेयर कर लेंगे, जैसे चर्च में संडे संडे प्रेयर हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे नहीं उनके हर कर्म की पूजा हो रही है। सारा दिन चर्च में लोग हैं, मंदिर में तो पुजारी सुबह से रात तक होगा और वो देवता को उठाएगा, उसको भोग लगाएगा, उसका श्रृंगार होगा, देखते हैं ना। हर कर्म की पूजा देवताओं की विधि पूर्वक, और फिर साज बाज से कीर्तन भी करेंगे, उनका गायन करेंगे, उनकी महिमा का बखान करेंगे। महात्मा बुद्ध के मंदिर में भी आप जाएंगे तो इस तरह से नहीं, बहुत साइलेंस में कुछ आकर के वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं लोग, हमने देखा है कई, हम बौद्ध टेम्पल्स में गए हैं तो उनका एक वो बना हुआ होता है पात्र, उसमें जाकर के वो सिर्फ अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ वो जैसे हमारे यहाँ साष्टांग दंडवत करते हैं ना, ऐसे वो सिर्फ दंडवत करते हैं और चले जाते हैं और मंदिर खाली पड़ा रहता है, कोई भी नहीं होता और उस मंदिर में। तो ऐसे पूजा में भी ऊंच हैं, श्रेष्ठ हैं, तो हर रीति से हर धारणा में हम ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा जैसे कहते हैं हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, पद्मा पदम भाग्यवान है, तो ऐसे ही पद्मा पदम भाग्यवान नहीं है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहने का मतलब बाबा ने हमें इसलिए कहा क्योंकि हर कदम में पद्मों की कमाई हम करने वाले हैं। अब कैसे हम पद्मों की कमाई करते हैं? बाबा की श्रीमत अनुसार जो कर्म हमने किया उस कर्म में हमने पद्म गुना कमाई की। हम इस एक जन्म में भविष्य केवल 21 जन्म नहीं, बाबा कहता 21 जन्म है लेकिन केवल 21 जन्म नहीं, लेकिन बाबा कहता है लगभग पूरा कल्प, ये तो लास्ट के कुछ जन्म जो है वो ब्राह्मण आत्माएं थोड़ा दुख कम भाग्य में आती हैं, नहीं तो लगभग पूरा कल्प हमें सर्व भाग्य प्राप्त होते हैं। इतनी कमाई हम अभी जमा करते हैं क्योंकि ये सारी कमाई यहाँ की प्रारब्ध है। सतयुग में थोड़ी कमाते हैं हम, त्रेता युग में थोड़ी कमाते हैं, कमाई कहाँ जमा हो रही है। इसीलिए बाबा कहता है संगम युग का एक एक सेकेंड हमारा इतना वैल्यूबल है कि एक सेकेंड भी हमने वेस्ट किया, यानी हमने एक वर्ष के बराबर अपना समय गवा दिया। तो ये सोमान को हम थोड़ा गहराई से उसकी स्मृति में जाते हैं। अब जैसे बाबा के हम नैनों के नूर हैं, तो बाबा ने कहा नैनों के नूर हैं, तो क्यों कहा भगवान ने हम उसके नैनों के नूर हैं? और कैसे हम भगवान के नैनों के नूर बन सकते हैं, क्या विशेषताएं हमारी होनी चाहिए? जैसे माँ कहेगी कि बेटा तो मेरी आंख का तारा है, मतलब लगभग इसी तरह से कि इतने प्यारे, इतने सिकिलदे, इतने लाडले हैं हम भगवान के कि भगवान ने हमें वो शब्द कहा, वो उपमा हमें दी कि हम वो हैं। तो क्या हम उस योग्य हैं? क्या सचमुच भगवान के नैनों के नूर बनने के योग्य हम हुए हैं? तो यदि हम उसकी गहराई में जाएंगे तो जब हम योग में बैठें तो हम वो चिंतन करें और हम देखेंगे बाबा हमें टच करेगा अपने आप। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ऐसे सोच लिया, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो थोड़ा रूखा सूखा लगता है, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या मतलब है? लेकिन क्या मतलब है गहराई में जाएंगे तो क्या मतलब है? दिन भर में जो भी बातें मेरे सामने आ रही हैं, उसे सामना करने के लिए मुझे कोई ना कोई शक्ति चाहिए। कभी मुझे सहन शक्ति चाहिए, कभी मुझे समाने की शक्ति चाहिए, कभी मुझे निर्णय शक्ति चाहिए, कभी मुझे परखने की शक्ति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पूरा समय मेरी शक्तियां कार्य कर रही हैं, यानी मेरी शक्तियां मेरे अधिकार में है। ऐसे नहीं कि बात हो गई फिर मुझे याद आ रहा है अरे मैंने तो सही निर्णय नहीं लिया, समय तो हाथ से निकल गया, ये किया होता, ये नहीं किया होता, हाँ, अगर उस समय फिर हम पश्चाताप करने लगते हैं, इसका मतलब मेरी शक्ति काम में नहीं आई, एक सेकंड भी मेरे से चूक गया और उसके बाद में मुझे समझ में आता है, इसका मतलब अवसर तो हम चूक गए ना। ऐसे ही सहन करना है, उसकी बजाय हमने सामना कर लिया। अगर मैंने सामना कर लिया, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले एक मुरली में समझाया था, तो हम फेल हो गए। ऐसे ही मुझे सामना करना है लेकिन उसकी बजाय मैंने समा लिया, गलत शक्ति का प्रयोग कर लिया, जो शक्ति चाहिए उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करना माना सारा दिन में मैंने अपने आप को उस गहराई से ये समझाया कि सही समय पर मेरी शक्तियां काम में आ रही हैं, और इसीलिए हम रात को अपना चार्ट चेक करते हैं। तो जितना हम अपनी चेकिंग करेंगे उतना हम सहज नेक्स्ट दिन के लिए उस स्वमान की श्रेष्ठता के अनुभव को ला सकेंगे। तो हमें स्वयं भी उन स्मृतियों में रहना है जो बाबा ने हमें दिलाई हैं, और अन्य को भी हमें वो सम्मान देना है। बाबा ने एक बात और हमें कही इसमें कि जो व्यक्ति स्वमान में रहता है उसे कभी भी अपमान फील नहीं होता है, जो अभिमान वाला होगा उसको अपमान फील होगा। ऐसी कई बातें होती हैं जिसमें हमारा अपमान होता है, लेकिन अगर मैं स्वमान में हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, कोई दूसरा मुझे सम्मान दे रहा है या नहीं दे रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने स्वयं उच्च श्रेष्ठ हैं, स्वयं भगवान हमें सम्मान दे रहा है, तो कोई आत्मा का सम्मान उसके आगे क्या करेगा? कोई बहुत ऊंची प्राप्ति है, उसके आगे कम प्राप्ति क्या करेगी? तो इसीलिए मुझे कभी किसी का अपमान जैसा लगेगा नहीं, बल्कि फिर भी हम उसे सम्मान देंगे। लेकिन अगर देह अभिमान मेरे अंदर अंश मात्र भी है तो फिर हमें फीलिंग आती है, ये निशानी है कि हम उतना स्वमान में नहीं है अभी। तो उसमें कुछ चार पांच बातें हैं जिससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वो देह अभिमान का सूक्ष्म रूप हमारे अंदर है। जैसे जो देह अभिमान वाला होगा वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझता है, कोई बातों में हमेशा अपने को हम राइट समझेंगे, और राइट समझते हैं इसलिए दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उनको मेरी बात माननी ही चाहिए, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बुरा लगता है, मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है कि मैंने जो कहा वैसा नहीं किया। लेकिन बाबा कहता है दूसरों के विचारों को भी मुझे सम्मान देना, हो सकता है उसके विचार मेरे से अलग हैं इसलिए वो हमसे नहीं हमारी बात नहीं मान रहे, तो हम उनकी बात को भी सुने, उनकी बात को भी समझने की कोशिश करें ना। ये स्वमान की स्थिति है कि दूसरे को भी मुझे उनके विचारों को भी सम्मान देना, मैं ही हमेशा राइट हूं कोई जरूरी नहीं है, दूसरे भी राइट हो सकते हैं, वो अपने नजरिए से राइट है, मैं अपने नजरिए से राइट हूं। कई बार एक ही चीज को हम कई तरह से सोच सकते हैं, हर एक का नजरिया उसमें अलग अलग हो सकता है, तो वो उस नजरिए से सही हो सकते हैं, मैं अपने नजरिए से सही हो सकती हूं। तो एक जो समझ की बात है, जो हमारी ज्ञान की समझ है, वो उस अनुसार। और दूसरा, जो व्यक्ति देहाभिमान में होता है वो दूसरों की प्रशंसा स्वीकार नहीं करते। सूक्ष्म है कि अगर किसी की तारीफ मेरे सामने हो रही है तो हमें लगेगा कि वो श्रेष्ठ इतने तो नहीं है, क्योंकि उनकी कमियां भी हमें पता है, तो फिर हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसके अंदर ये कमी भी है, आप नहीं जानते हो। तो अगर मैंने किसी की तारीफ नहीं स्वीकार की और उसकी कमी निकालना शुरू किया तो इसका मतलब ये भी मेरा सूक्ष्म देह अभिमान है, या हम जिसे ईर्ष्या का रूप भी कह सकते हैं। किसी की उन्नति को हम सहन नहीं कर पाते या हम देख नहीं पाते और फिर उनके लिए कुछ गलत बातें अगर हम कहते हैं तो ये भी देह अभिमान का सूक्ष्म अंश है। यानी हम उस आत्मा का अपमान करें, उसे हम सम्मान नहीं दे रहे, लेकिन उस आत्मा का कहीं ना कहीं हम देह अभिमान के कारण मान कर रहे हैं। अगर थोड़ा रौब का अंश हम रखते हैं, दुनिया में लोग आज सोचते हैं इतना ज्यादा नम्र हो जाएंगे तो इतना ज्यादा हम प्यार से चलेंगे तो क्या होगा, लोग तो हमें मानेंगे ही नहीं, कोई हमारी बात ही नहीं मानेगा, कोई हमें कुछ समझेगा ही नहीं। थोड़ा तो रौब रखना ही पड़ता है। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों को रौब नहीं रखना है, क्या रखना है, रुहाब। रुहाब माने रूहानी नशा, जिसको बाबा कहता है, जो अभी हमने बात की कि हम स्वमान में रहते हैं तो नारायणी नशा जरूर हमें अनुभव होता है, लेकिन जितना नशा उतनी नम्रता। नशे का मतलब अभिमान नहीं, दुनिया में देह अभिमान का नशा माना अहंकार, लेकिन हमारा नशा कैसा है कि जितना नशा है उतनी ही ज्यादा नम्रता, उतना ही ज्यादा हम झुकते हैं। ब्रह्मा बाबा हमें कहते हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं क्या हूँ, बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हमेशा मालिकम सलाम, बालक सो मालिक जैसे बाबा कहता है, तो हम भी सेवाधारी हैं, तो रौब रखने की बात नहीं, लेकिन नशा माना नम्रता। ये तो देह अभिमान का जो सूक्ष्म अंश है उसे भी हमें स्वमान से समाप्त करना है। तो ठीक है, ये थी, अभी योग का समय भी है।
ओम शांति। कितनी सुंदर सरल मधुर भाषा से हमें डॉक्टर सविता दीदी ने स्पष्ट किया कि मैंपन छी है। मैंपन जो देह भान का आता है वो क्या है, छी, छी माना छोड़ने लायक, और मैंपन दूसरा जो आत्मा का मैं है वो हमें क्या करता है, पंछी बनाता है। शब्द एक ही है, मैं पंछी, एक है मैंपन, देह अभिमान का मैंपन छी है, और आत्मा का मैं की स्मृति हमें उड़ना सिखाता, पंछी बनाता है, और उड़ती कला से हम थकते नहीं है, उड़ती कला से हम सम्मान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं तो सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं, तो सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं तो इंद्रियां हमारी ऑर्डर में चलती हैं, शासन, सेल्फ रूलिंग पावर, सेल्फ गवर्निंग पावर हमारे अंदर एहसास होती है। कितना सुंदर स्टोरी के माध्यम से, याद रहेगी ना सबको कहानी, तो हा? नया नया टेस्ट, नई नई रेसिपी बाबा हमें इन महान आत्माओं के द्वारा दिला रहे हैं। तो हम दिल से स्वीकार करते हैं कि दीदी हम सदा शेर बनकर रहेंगे, शेर माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, भीड़ में नहीं, देखा देखी नहीं, एक हाथ उठा के हम कहें कि दीदी हम इस कलियुगी जंगल में शेर हैं, हमें माया माया छू नहीं सकती, खाने की तो उसमें ताकत ही नहीं है, पानी डालो गल जाएगी, आग जलाओ जल जाएगी, कौन, तो माया छू नहीं सकती, क्योंकि मैं पंछी हूं, उड़ जाऊंगा मैं, उड़ जाऊंगा तो वो कहां आएगी, कहां ठहरेगी। ठीक है, तो हम दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने इतनी गुई है पहले चैप्टर को समर्थ और शक्तिशाली जीवन बनाने के लिए इतनी पावरफुल स्मृतियां इतनी सहजता से दी, जो बिल्कुल सुपाच्य ग्रहण हो गई है। अभी हम सब प्यारे बाबा की याद में बैठे। ओम शांति।